समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनीता आनंद। अनीता, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार नेहा, हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 FM। वी हैव फॉर ऑल ऑफ यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first, Neha.
भारत ने पाकिस्तान की उकसावे वाली और भड़काऊ कार्रवाई का उचित जवाब देते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए।
New Delhi says Pakistan army continues attacking India's western borders using drones, long-range weapons and fighter jets. Indian forces neutralizes the attacks effectively.
भारतीय सशस्त्र बलों ने भारत के कई ठिकानों को नष्ट करने के पाकिस्तान के दावे को खारिज करते हुए इसे भ्रामक प्रचार अभियान करार दिया।
इंडिया सेज पाकिस्तान आर्मी मूविंग ट्रूप्स टुवर्ड्स फॉरवर्ड एरियाज इंडिकेटिंग एन ऑफेंसिव इंटेंट, असर्ट्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर इन हाई स्टेट ऑफ ऑपरेशनल रेडीनेस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की।
Foreign Minister Dr. S. Jaishankar speaks to U.S. Secretary of State Marco Rubio amid tensions between India and Pakistan. Says India's approach has always been measured and responsible and remains so.
पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत की कार्रवाई में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 5 कुख्यात आतंकवादी मारे गए।
U.S. President Donald Trump calls for a 30-day unconditional ceasefire between Russia and Ukraine. Violations can trigger new sanctions.
भारत में 2014 से 2021 के बीच मातृ और शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज की गई।
एंड इन आर्चरी इंडिया बैग्स गोल्ड इन मेंस कंपाउंड टीम इवेंट एट द वर्ल्ड कप स्टेज 2 इन शंघाई। And now, time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. Today, we will talk about fake information doing rounds and alert our listeners regarding their authenticity. Befitting response of India against Pakistan's aggression at all fronts has made terror breeding ground Pakistan so nervous that it is now indulging in running disinformation factory in the digital space. From pushing fake videos to morphed images on the social media platforms, Terror Factory Pakistan is making desperate attempts to mislead the media, distort the global narrative and manipulate public perception.
Sensing it inevitable defeat in protecting terrorists on their soil, Islamabad has chosen digital battleground to show its frustration. All kind of fake and malicious content are being peddled by nervous Pakistan at different social media platforms. The desperation of Pakistan is as palpable as it is using content of video game to boast it on digital platforms against India. A clip of a video game has been circulated relating it to ongoing situation between the two countries. One more example is a video of Dhaka which has been shared to make a false claim of its attack in Jammu. Similarly, a 2020 video of explosive attack in Lebanon was used to claim that Pakistan has launched a missile attack on India. All these deliberated attempts clearly show that New Delhi's heavy retaliation made Islamabad anxious and it is making failed attempt to control the narrative through a barrage of lies and digital theatrics. With Saklain Akhtar and Bhanu Pratap Singh, this is Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
India's all-out attack to counter Pakistan's aggression has left the terror spawning Pakistan anxious.
Pakistan's despairing pursuit of propagating fake news on the digital battleground has been no different than its inevitable descent in shielding terrorism on its soil. A helpless Pakistan is now cornered to paint fake news and malicious content on the digital walls. A barrage of baseless content involving capturing of Indian soldiers and destruction of Indian defense systems is being hopelessly thrown by various Pakistani social media channels to whitewash and mask Pakistan's inescapable loss in the global media. A video claiming the capture of an Indian female Air Force pilot in Pakistan is being circulated in the social media. Similarly, a 2016 image is being peddled by various pro-Pakistan social media accounts to falsely claim that three fighter jets have been crashed in different areas of the Himalayan region. Another fake claim that an Indian pilot has ejected from a fighter jet over Pakistan-occupied Kashmir is also being disseminated across various platforms, which reflects the evident frustration of the terror breeding ground Pakistan. With Divakar, Bhanu Pratap सिंह, आकाशवाणी न्यूज़, दिल्ली।
पाकिस्तान की आक्रामकता के विरुद्ध भारत के हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब से परेशान आतंकगढ़ पाकिस्तान अब डिजिटल क्षेत्र में गलत सूचनाएं फैलाने में जुट गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी वीडियो और गलत चित्रों का उपयोग कर पाकिस्तान वैश्विक नैरेटिव विकृत करने और जनता की धारणा प्रभावित करने की निरंतर कोशिश कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पाकिस्तान किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है।
आतंकवादियों को पनाह देने के लिए मशहूर पाकिस्तान अब पूरी तरह दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। इसी हताशा में वह अब सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी और बेबुनियाद तस्वीरों और वीडियो से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते और सच्चाई सामने आ ही जाती है। पाकिस्तान ने एक और हास्यास्पद हरकत करते हुए भारत के खिलाफ शेखी बगारने के वीडियो गेम की क्लिप का इस्तेमाल किया है, जिसमें फर्जी रॉकेट और मिसाइल उड़ते नजर आ रहे हैं और इसे इस तरह पेश किया जा रहा है कि जैसे भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव से संबंधित है। पाकिस्तान के लफाजी का एक और उदाहरण सामने आया है, जिसमें ढाका के एक वीडियो को जम्मू में किए गए पाकिस्तानी हमले के तौर पर दिखाया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान ने लेबनान में 2020 में हुए एक विस्फोटक हमले के वीडियो का इस्तेमाल कर यह फर्जी दावा किया है कि उसने भारत पर मिसाइल हमला किया है। ये सब कोशिशें दिखाती है कि पाकिस्तान की सूझबूझ पर पत्थर पड़ गए हैं और बदहवासी में उसे कुछ सूझ नहीं रहा और वे हताशा में बचकानी हरकत कर रहा है। क्लीन अख्तर की रिपोर्ट के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस महत्वपूर्ण समय में प्रत्येक जानकारी की सावधानी पूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है। कोई भी संदिग्ध सामग्री, विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से संबंधित किसी भी जानकारी की सूचना पीआईबी फैक्ट चेक को देनी चाहिए। ऐसी सामग्री व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी socialmedia@pib.gov.in पर भी भेजी जा सकती है।
स्पीकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, हु हैज सर्व्ड 42 इयर्स ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग 7 टेन्योर्स इन कश्मीर, अर्ज्ड सिटीजंस टू रिलाई ओनली ऑन ट्रस्टेड सोर्सेज सच एज द गवर्नमेंट प्रेस ब्रीफिंग्स।
This response was very measured, controlled, proportional, and we hit as part of Operation Sindoor. Indian Armed Forces had hit at 9 locations all across the Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, which were all launch pads of terrorists, and also two very important headquarters of Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toyba in Bahawalpur and Muridke, essentially to tell Pakistan that right now we have responded to a terror act and we have kept it out of the domain of military or civilian targeting of Pakistan. And thereafter, again, a message was sent to the world and to the Pakistan leadership that India doesn't want war. And therefore, the escalation or responses are to the Pakistani violence, and we want to have peace in the region. But essential to understand is that he is now fighting wars at two different levels. They are fighting a war of fake news, media, social media, which even the Pakistani public is unwilling to believe. Through your Akashwani system, I just want to tell everybody who is listening, watch and listen to the press briefings given by our system. Listen to the Prasar Bharati elements, Delhi, Doordarshan, Akashwani, All India Radio, where you will get credible, verified news.
सरकार ने सभी मीडिया चैनलों को सलाह जारी की है कि वे सामुदायिक जागरूकता अभियान के अलावा अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के सायरन की आवाज का इस्तेमाल न करें। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सायरन के नियमित इस्तेमाल से हवाई हमले के सायरन के प्रति नागरिकों की संवेदनशीलता कम हो सकती है और नागरिक वास्तविक हवाई हमलों के दौरान इसे सामान्य बात समझ सकते हैं। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छता के लिए जाना जाता है। इसे हरा भरा बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है।
हिमाचल प्रदेश प्लास्टिक निस्तारण के क्षेत्र में ठोस नीतियों, नागरिक सहभागिता और तकनीकी नवाचार के माध्यम से एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रभावी कदमों के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं और जहां हिमाचल पूरे देश में एक हरित राज्य के रूप में उभर रहा है, वहीं अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए अनुकरणीय साबित हो रहा है। हाल ही में राज्य सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आगामी 1 जून 2025 से राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों तथा सरकार के अन्य संगठनों द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों, कार्यक्रमों के साथ साथ पर्यटन निगम के होटलों, निजी होटलों और सार्वजनिक व सामाजिक समारोहों में 500 मिलीलीटर तक की पीईटी बोतलों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 500 मिलीलीटर या उससे कम की प्लास्टिक पानी की बोतलों की बिक्री और उपयोग पर भी पूर्णतया रोक रहेगी। प्रदेश में प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर विभिन्न नियमों के तहत 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। हिमाचल में सभी तरह के हरे पेड़ों के कटान और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू है। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में सरकार ने कागज, कपड़ा, पत्तों से बने बैग और बायोडिग्रेडेबल सामग्री के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
From Himachal Pradesh, we go over to Karnataka, where the government has launched Sanchari Kaveri and Saral Kaveri schemes to quench the thirst of people during the summer months in Bengaluru. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar launched the schemes in the city yesterday. More from our correspondent.
Summer is here and Bengalurians, especially living in residential complexes and slums, face difficulties to source water. The water tanker cartel are fleecing the people during this time. To provide seamless water supply at affordable rates, the state government has launched Sanchari Kaveri and Sarala Kaveri schemes yesterday. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar had launched them yesterday in the IT capital. The Bengaluru Water Supply and Sewage Board will implement these schemes. The citizens can use user-friendly mobile app and web platforms to register and request for water supply through tankers. Choose suitable capacity, track the vehicle in real time, make the payment online and receive driver and delivery details online. An OTP verification is made mandatory at the time of delivery to ensure accountability. The board has promised that once the booking is received, the water tanker will reach the address within 24 hours of booking. Even during peak period, a 24/7 helpline is also established for grievance redressal. A 4,000 litre tanker will cost 660 rupees. 12,000 litres will cost 1,290 rupees. For long distances, a sum of 50 to 70 rupees per kilometre will be charged by the board. This scheme is named as Sanchari Kaveri, where Sanchari in Kannada means mobile. Another scheme called Sarala Kaveri is for those whose areas come within Kaveri River Water Supply Zone for new water line connection. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
इन आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इंडिया वॉन 3 मेडल्स इन शंघाई टुडे। द मेंस कंपाउंड टीम ऑफ अभिषेक वर्मा, ओजस देवतले एंड ऋषभ यादव वन गोल डिफीटिंग मेक्सिको टीम 232-228 इन द फाइनल। दे हैड अर्लियर बीटन डेनमार्क इन द सेमीफाइनल एंड ग्रेट ब्रिटेन इन द क्वार्टर फाइनल। इन द विमेन्स कंपाउंड इवेंट ज्योति सुरेखा वेन्नम, मधुरा धमनगांवकर एंड चिकिता तानिपार्थी टुक सिल्वर एज दे लॉस्ट टू मेक्सिको इन मेक्सिको टीम इन द फाइनल। इंडिया बीट कजाकिस्तान एंड ग्रेट ब्रिटेन टू रीच द फाइनल। इंडिया ऑल्सो वन ब्रॉन्ज इन द मिक्स टीम इवेंट। वर्मा एंड धमनगांवकर टीम अप टू डिफीट मलेशिया इन द थर्ड प्लेस मैच।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में अंतिम दिन निशानेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में दिल्ली की नाम्या कपूर ने 27 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश की अंजलि महेंद्र भागवत ने 26 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया। राजस्थान की खान कव्यास ने 19 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। इस बीच इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जिम्नास्टिक के क्वालिफाइंग मैच चल रहे हैं। इस साल राष्ट्रीय राजधानी में निशानेबाजी, साइकिलिंग और जिम्नास्टिक के आयोजन हो रहे हैं। शेष प्रतियोगिताएं बिहार में हो रही हैं।
एंड नाउ वी रिकॉल द इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन दिस डे।
In today's episode, we commemorate the 165th anniversary of the First War of Indian Independence that was sparked on the 10th of May, 1857. The War of Independence was fed by resentments born of diverse perceptions, including the disturbing of the social fabric, harsh land taxes, and crude treatment of Indian kings, queens, and princes.
In May 1857, 85 sepoys of the 3rd Cavalry Regiment, on their refusal to use the greased cartridges, were court-martialed and sentenced to long terms of imprisonment. On the 10th of May, the sepoys shot their officers, released their fellow sepoys and headed towards Delhi. After the outbreak of the mutiny in Meerut, the sepoys quickly reached Delhi, whose 81-year-old Mughal ruler, Bahadur Shah Zafar, was declared the Emperor of Hindustan.
Very soon, the uprising spread throughout northern and central India. Bahadur Shah Zafar in Delhi, Begum Hazrat Mahal in Lucknow, Nana Sahib in Kanpur, Lakshmi Bai and Tantiya Tope in Jhansi and Gwalior, Khan Bahadur Khan in Bareilly, Maulvi Liaqat Ali in Prayagraj and Varanasi, and Kunwar Singh in Bihar were the main leaders of the First War of Independence.
The East India Company's response came rapidly as well. With help from reinforcements, Delhi was retaken by the end of September. However, it then took the British around 1 year to completely suppress the uprising, which was contained only with the independence activists' defeat in Gwalior on the 20th of June, 1858.
The uprising of the First War of Independence shook the foundation of the British East India Company and disclosed their inefficiency in handling the Indian administration. The major impact was the introduction of the Government of India Act 1858, which abolished the rule of the British East India Company and marked the beginning of the British Raj that bestowed powers in the hands of the British government to rule India directly through representatives.
After re-clearance from air traffic control, ATC heli service from Kedarnath Dham in Uttarakhand has been resumed. The ATC has reviewed all air travel in the country and has given clearance to the helicopter services during the Char Dham Yatra. Kedarnath heli service was closed due to lack of clearance for a few hours, which is now running smoothly. Meanwhile, the Char Dham Yatra is being conducted smoothly without any interruptions. So far, more than 4 lakh devotees have visited the holy shrines. Chief Minister Pushkar Singh Dhami, through a social media post, has urged the devotees not to pay attention to any kind of rumours. The Chief Minister said that the state government is continuously working to make the pilgrimage experience safe and convenient for all devotees. And the India Meteorological Department, IMDS, forecast thunderstorm accompanied with gusty winds and lightning over northwest, central and east India today. In the northwest India, heavy rainfall is predicted over Arunachal Pradesh today and Assam, Meghalaya, Manipur, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim tomorrow. The weather department also predicted hot and humid weather conditions over Bihar, Jharkhand, Kerala, Mahi, Tripura and Odisha. A gradual rise in maximum temperatures by 3 to 4 degrees Celsius is likely over East India during the next 3 days, and a gradual rise in maximum temperature by 2 to 4 degrees is also likely over Maharashtra during the next 2 days. And now that brings us to the last segment of the program, wherein we remember the celebrities who are either born this day or who passed away today. We begin by remembering the famous poet Kaifi Azmi, whose death anniversary is today. He's the Indian Urdu poet. He's remembered as one who brought Urdu literature to the Indian motion pictures also. Together with Pirzada Qasim and others, he participated in many memorable Mushaira gatherings of the 20th century.
Uttar Pradesh ke Azamgarh zile ke chote se gaon mein Mizwa mein 14 जनवरी 1919 में जन्मे कैफी को कविताएं पढ़ने का शौक लगा। भाइयों ने प्रोत्साहित किया तो खुद भी लिखने लगे। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली गजल लिखी। अगर गजल का गुलिस्ता होगा तो कैफी आजमी के बगीचे से हर फूल की खुशबू आएगी। वह उन चुनिंदा शायरों में से हैं जिन्होंने रुमानियत के साथ साथ समाज को भी अपने अशारों में लिखा। उनके लफ्ज बेहद आसानी से समझे जा सकते हैं। उन्होंने वही कहा जिससे लोगों के जहन को आवाज मिल सके। कैफी आजमी को राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा कई बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित कैफी आजमी कुछ यूं लिखते हैं, बस एक झिझक है यही हाले दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, दो गज जमी भी चाहिए दो गज कफन के बाद। आइए सुनते हैं कैफी आजमी का लिखा ये गीत।
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो।
Kaifi Azmi abandoned his studies of Persian and Urdu during the Quit India agitations in 1942 and shortly thereafter became a full-time Marxist when he accepted membership of the Communist Party of India in the year 1943. During this period, the leading progressive writers of Lucknow noticed him. They were very impressed by his leadership qualities. They also saw in him a budding poet and extended all possible encouragement to Kaifi Azmi. Consequently, Azmi started to win great acclaim as a poet and became a member of Progressive Writers Movement of India. And at the age of 24, he started activities in the textile mill areas of Kanpur. Another song written by Kaifi
Azmi. उसके दर से उठा था के वो रोक लेगी मना लेगी मुझको
फिल्म शोले में सांभा वाला किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता मैकमोहन की आज पुण्यतिथि है। मैकमोहन ज्यादातर फिल्मों में विलन के किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं। मैकमोहन का असली नाम मोहन माखीजानी था। मैकमोहन का जन्म 24 अप्रैल 1938 को कराची में हुआ था। उन्होंने 1960 के दशक में फिल्मों में काम करना शुरू किया और 200 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए। मैकमोहन ने हिंदी के अलावा भोजपुरी, गुजराती, हरियाणवी, मराठी और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में फिल्मों में खलनायक की भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया जिनमें डॉन, कर्ज, सत्ता पे सत्ता, जंजीर, रफू चक्कर, शान, खून पसीना और शोले शामिल हैं।
कितने आदमी थे
सरदार? दो आदमी।
दो आदमी। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
पूरे 50,000।
Today is also the birth anniversary of the Indian film producer Tarachand Bardjatya. He has produced many Hindi films from the 1960s through 1980s. He founded the Rajshri Productions, which continues to produce films even today. His mainstay was family-oriented films based on family values. He established the Rajshri Pictures in 1947. Some of the notable films produced by him are Dosti, Jeevan Mrityu, Upahar, Piya Ka Ghar, Saudagar, Geet Gaata Chal, Tapasya, Chichor, Dulhan Wahi Jo Piya Man Bhai. I'm playing a snippet of a song from the film Piya Ka Ghar, sung by Kishore Kumar.
ये जीवन है इस जीवन का यही है यही है रंग रूप ये जीवन है इस जीवन का यही है यही है रंग रूप थोड़े गम हैं थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम हैं थोड़ी खुशियाँ यही है यही है छाव धूप ये जीवन है।
ताराचंद बरजातिया का जन्म राजस्थान के नागौर में हुआ था। वे 19 वर्ष की आयु में मोती महल थिएटर में बिना किसी वेतन के एक प्रशिक्षु के रूप में काम करने लगे। कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने अपने मालिक के लिए सफलता अर्जित की। उनकी आर्थिक मदद से ही 14 साल बाद 15 अगस्त 1947 में उन्होंने राजश्री पिक्चर्स प्रोडक्शन लिमिटेड की स्थापना की और कम लागत, नए कलाकारों और सार्थक मूल्यों के सहारे कई फिल्में बनाने लगे। जिन फिल्म निर्माता निर्देशकों ने उन पर पूरा भरोसा किया उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम मनमोहन देसाई का था, जिन्होंने अपनी कई सफल फिल्मों अमर अकबर एंथनी, परवरिश, धर्मवीर, कूली आदि फिल्मों के वितरण का अधिकार उन्हें सौंपा। जिन सफल फिल्मों से उन्हें सबसे अधिक लाभ मिला उनमें शोले, जुगनू, रोटी कपड़ा और मकान और विक्टोरिया नंबर 2003 प्रमुख है। 1962 में ताराचंद ने अपना स्वतंत्र प्रोडक्शन शुरू किया। इसके बाद एक के बाद वे सफल फिल्मों का उनका सिलसिला शुरू होता रहा।
Today is also the death anniversary of Shiv Kumar Sharma. He passed away on this day in 2022, the Indian classical musician and santoor player who is credited with adapting the santoor for Indian classical music. As a music composer, he collaborated with Indian flautist Hari Prasad Chaurasia under the collaborative name of Shiv Hari and composed music for such hit Indian films like Fasle, Channi and Lamhe. Sharma was awarded the Sangeet Natak Academy Award in 1986 and the Padma Shri and Padma Vibhushan in 1991 and 2001. One of his performances on Santoor.
आज पंकज मलिक का जन्मदिन है। लगभग 5000 गीतों और रचनाओं के साथ साथ लगभग 150 फिल्मों के साथ पंकज मलिक का भारतीय फिल्मों और भारतीय लोकप्रिय संगीत की दुनिया में योगदान विस्मयकारी था। पंकज कुमार मलिक को 1931 में सुरसागर की उपाधि, 1962 में संगीत रत्नाकार की उपाधि, 1970 में पद्मश्री और 1973 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षा समाप्त करने के बाद ही उनका जीवन में एक अहम मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेन्द्रनाथ टैगोर से हुआ, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। रविन्द्र संगीत को शांति निकेतन की सरहद से बाहर निकालकर दुनिया को उससे अवगत कराने का श्रेय भी पंकज मलिक को ही जाता है। पंकज मलिक ने रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता दीनेर शेषे घुमेर देशे को संगीत दिया, जो रविन्द्रनाथ टैगोर को काफी पसंद आया।
लो मोर प्राण ओ परते
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और अनीता आनंद को परिक्रमा कार्यक्रम यही समय पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।